मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, तीन दिनों के बाद आज 5 अक्टूबर 2015 के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे बेहद बेहद खुशी हो रही है। दोस्तों, निश्चित रूप से इन तीन दिनों में मैंने आप सबको काफी मिस किया है। आदत हो जाती है और पता नहीं कुछ ऐसी आदत सी हो गई है कि यदि आप लोगों से बातचीत न हो तो कुछ कुछ मिसिंग सा लगता है, लेकिन मैं समझता हूं कि शायद यही मिसिंग हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि जब हम किसी चीज को मिस करने जैसा अनुभव करने लगते हैं तो फिर उसकी पूर्ति करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। फ्रेंड्स, और यदि आप भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे तो मेरे लिए ये बेहद आत्मसंतोष की बात होगी कि आप भी इस डेली ऑडियो को मिस करते हैं। और यदि आपको सच में ऐसा लग रहा हो तो आप समझ लीजिए कि सिविल सर्विस की तैयारी की तरफ आपके जो कदम हैं वो बहुत सही मायने में बढ़ रहे हैं। दिशा बिल्कुल ठीक है, रफ्तार पर डिपेंड करेगा कि आप अपनी मंजिल तक कब पहुंच पाएंगे। फ्रेंड्स, इसी क्रम में मुझे अपने उन नौ नौजवान साथियों का भी स्वागत करते हुए बेहद खुशी हो रही है जिन्होंने एकेडमी की फरवरी 2016 की होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं अतुल कुमार शर्मा बदायूं यूपी से, उमाकांत परिदा उड़ीसा से, जय कुमार गुप्ता जबलपुर मध्य प्रदेश से, रवि प्रताप सिंह सिकरवार मुरैना से मध्य प्रदेश से, और मुरैना और मध्य प्रदेश से ही हैं रेणु धाकड़, गौरी शंकर रावत ग्वालियर से, विजय कुमार रांची से, लक्ष्मीकांत तिवारी आप भी रांची से हैं, और कृष्णकांत फतेहपुर उत्तर प्रदेश से। तो अतुल, उमाकांत, जय कुमार, रवि प्रताप, रेणु, गौरी शंकर, विजय, लक्ष्मीकांत और कृष्णकांत, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सब आए, पूरा मन बना करके आए, और मैं आपको सच कहता हूं कि जितना भी आप ले जाना चाहेंगे आप उतना यहां से ले जा सकेंगे। आप देखेंगे कि आपका अनुभव जब 15 दिनों के दौर से गुजरेगा तो सच में आप सब अपने अंदर कितना बदलाव महसूस करेंगे हर स्तर पर, चाहे वो पढ़ने का तरीका हो, चाहे एटिकेट्स हो, शिष्टाचार जिसे हम कहते हैं, चाहे लिखने का ढंग हो, सोचने समझने का तरीका हो, यहां तक कि जिंदगी के प्रति नजरिया हो। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर ऐसा कुछ करेंगे कि हमारे जीवन को एक सकारात्मक दिशा मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक बार आप सभी का फिर से हार्दिक रूप से स्वागत है। एक मेरे पास दोस्तों एक सूचना है, और मैं समझता हूं कि ये एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है। और सूचना ये है फ्रेंड्स कि अभी जो अक्टूबर में क्लासेस होने वाली हैं, उस क्लासेस में कुछ सीट्स अभी खाली हुई हैं। सीट्स खाली होने का कारण ये रहा कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन किसी की स्टेट सिविल सर्विस की प्री के एग्जाम आ गए, किसी के मेंस के एग्जाम आ गए, किसी के दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस की डेट आ गई, जिसके कारण उन्होंने अभी अक्टूबर बैच को ज्वाइन करने में अपनी असमर्थता सिद्ध व्यक्त की है। तो ऐसी स्थिति में अक्टूबर बैच के लिए कुछ सीट्स खाली हैं, और वे स्टूडेंट जो इस अक्टूबर के बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन अभी जो फरवरी में जो अगला बैच होने वाला है उसके लिए कराया है या नहीं कराया है, जो भी इच्छुक हैं वे एकेडमी से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि ये सारा काम आपको दो दिन के अंदर ही कर लेना होगा, और जिस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है मैं आपको वो नंबर बता रहा हूं। मोबाइल नंबर है 9754045091। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मोबाइल नंबर 9754045091। 91। तो मित्रों, दो दिनों के अंदर आप जो भी इसके लिए इच्छुक हैं कि वो अक्टूबर के बैच को ही ज्वाइन कर लें, वो इस नंबर पर बात कर सकते हैं। एक बात मैं जरूर अपनी ओर से कहना चाहूंगा, दो बातें हैं फ्रेंड्स। पहला तो ये कि जो अक्टूबर के बैच की जो फीस है वो फरवरी के बैच जो 2016 में होगी उसकी तुलना में 500 रुपये कम है, यानी कि आपको तुरंत 500 रुपीज का फायदा होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि चलिए इससे भी जो बड़ा फायदा है वो सच पूछे तो 4 महीने पहले ही आप ये क्लासेस कर चुके होंगे। तो ये जो 4 महीने का वक्त आपका जो बचेगा, जो आप फरवरी में करते अगर आप करना चाह रहे हैं तो, और यदि आप उसे अक्टूबर में कर लेंगे तो नवंबर ऑनवर्ड्स जो आपकी तैयारी होगी उसे एक बहुत सही दिशा मिल जाएगी। और सच पूछिए तो आप अपने जीवन के ये जो 4 महीने जो सबसे अमूल्य महीने हैं, अभी जो वक्त है आपका पूरा का पूरा सबसे ज्यादा कीमती है, इसको और अधिक कीमती बना सकेंगे, आप राइट ट्रैक पर तैयारी कर सकेंगे, इसका लाभ डेफिनेटली आप लोगों को मिलेगा। तो मित्रों, ये एक सूचना है। और इस बीच में देखता था कि ईमेल पर मेरे पास बहुत से ऐसे रिक्वेस्ट आती थी कि वो अक्टूबर के बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यह एक अद्भुत संयोग उपस्थित हुआ है कि कुछ सीट्स अभी अवेलेबल हैं, यदि आप लोग चाहते हैं तो आप उसे अवेल कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट चरण पर, जो एक लाइफ मैनेजमेंट का चरण होता है। आपको मालूम है कि इसका नाम हम लोगों ने पहले काफी पहले बदल दिया है, अब मोटिवेशन की जगह लाइफ मैनेजमेंट रखा है। और सच पूछे दोस्तों तो मुझे अब यही लगता है कि बात मोटिवेशन से नहीं बनती है, वो तो केवल एक उत्तेजना भरने भर की बात होती है, लाइफ बनती है सही मायने में चीजों को मैनेज करने से। मित्रों, आज मैं आपको एक बड़े नए विषय पर बताने जा रहा हूं, विषय तो नया नहीं है बल्कि नए तरीके से बताने जा रहा हूं। और आप लोगों को भी शायद इस बात की प्रतीक्षा होगी कि सर अक्सर फिल्मों पर बात करते थे लेकिन पिछले कई महीनों से उन्होंने किसी फिल्म के बारे में कोई चर्चा नहीं की है, जबकि इस बीच में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आई हैं। हाँ यस दोस्तों, मैं फिल्में चूंकि नहीं देख पा रहा था किसी वजह से, इसीलिए मैं फिल्मों पर बात भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन बहुत लंबे अरसे के बाद मैंने एक फिल्म देखी है, मैंने और मेरी पत्नी ने, वो है किस किस को प्यार करूं। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने भी ये फिल्म देखी होगी। एक तो कुछ नाम ही ऐसा है कि जो लगता है कि देखना चाहिए। फिर कपिल शर्मा जो अभी थोड़े से कॉमेडियन के रूप में, एक नए कॉमेडियन के रूप में इमर्ज हुए हैं, उनमें भी लोगों को देखने का एक उत्साह होता है उनको देखने का, तो लोग उन काफी ये फिल्में देखी हैं। मित्रों, मैं इस फिल्म को एक अलग नजरिए से आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक ऐसे ग्रुप से बात कर रहा हूं जो अपनी जिंदगी में तब्दीलियां चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं और सिविल सर्विस या दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के सफलता के शिखर तक पहुंचना चाहते हैं। फ्रेंड्स, वैसे अगर आप देखें तो ये फिल्म एक कॉमेडी फिल्म है, इंटरटेनिंग फिल्म है, कहानी का कोई अर्थ नहीं है। आप देखते हैं, अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहानी ही अपने आप में गड़बड़ है, क्योंकि कोई भी राम शिव कृष्ण कुमार राम शिव कृष्ण मतलब हिंदू ही है करेक्टर, अगर आप देखें तो चार चार शादियां नहीं कर सकता, वो इलीगल हो जाएगा, है ना। लेकिन इसी तरह से चीजें चलती हैं, कहानी तो कहानी होती है, उससे मैसेज बड़े अलग तरीके से जाता है, उसका मैसेज बड़ा डिफरेंट है। मैं उस मैसेज पर भी नहीं जा रहा हूं, मैं इसके उस हिस्से के बारे में आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं, अप्रत्यक्ष रूप से सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर भी। सच पूछिए तो आप, हम जो फिल्म देखने गए हैं वो इसी लिहाज से देखने गए हैं जिसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं। और वो चर्चा ये है कि जो कपिल शर्मा हैं वो किस तरीके से इंस्टेंट तत्काल कोई बहुत जोक जैसा सुना देते हैं, समस्याओं के समाधान निकाल लेते हैं, या भाषा का बड़ा गजब का वो इस्तेमाल कर जाते हैं और इस तरह के जोक सुनाते हैं जिससे कहीं न कहीं सामाजिक समस्या भी रिफ्लेक्ट होती है और साथ ही साथ आपको हंसी भी आ जाती है। और ये सब कुछ ज्यादातर मामलों में, मैं कह सकता हूं कि शायद 98-99% मामलों में मर्यादा की सीमा तक होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, तो मर्यादा की सीमा के अंदर हास्यपरक जोक सुना देना, चुटकुले सुना देना बहुत बड़ी बात है। देखिए, चुटकुले तो हम कुछ भी गढ़कर सुना सकते हैं, जानवर से लेकर के किसी को भी पात्र बना करके चुटकुले हम बना सकते हैं और इत्मीनान से सोच करके कुछ तैयार भी कर सकते हैं। लेकिन जो उस समय की स्थिति है, उस स्थिति में से कुछ ऐसा निकाल लेना कि वो उस पर फिट भी बैठे, सटीक बैठे, यानी कि आप कुछ बड़ा उटपटांग बात कह रहे हैं, उटपटांग कोई उदाहरण दे रहे हैं, नॉट एट ऑल, आपकी बात बड़ी सटीक होती है जो वहां बिल्कुल फिट बैठती है और उसमें या तो व्यंग होता है या फिर जबरदस्त हास्य भी होता है और आदमी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। यह बहुत बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स। तो सच पूछे तो हम सभी सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर इसी तरह की चीजों को देखने की लालसा लेकर के फिल्म में गए थे कि देखें कि क्या होता है, कैसे होता है, राइट फ्रेंड्स। अब आप देखिए कि सिविल सर्विस से के लिए इसमें से क्या निकलता है। मित्रों सच पूछिए तो जो इस तरह का जो ब्रेन होता है, ये बहुत अद्भुत ब्रेन होता है। इसको आप सामान्य रूप से मान करके मत चलिए कि जो तत्काल कुछ सोच ले और ऐसा सोचे कि जो बिल्कुल हिट करता हो, बिल्कुल बिल्कुल उसी पॉइंट पर जाकर के चोट पहुंचाता हो, बिल्कुल भिन्न अर्थ दे देता हो और ऐसा अर्थ नहीं जो अनर्थ हो या कुतर्की हो, बिल्कुल ऐसा जो एकदम एप्रोप्रिएट है और हंसी भी ले आए, एक बहुत बड़ी बात होती है मित्र। इसके लिए भाषा पर जितनी कमांड होनी चाहिए आप कल्पना नहीं कर सकते। एक छोटे से शब्द को बदल देने से पूरे का पूरा अर्थ बदल जाता है। आप घटनाओं की इतनी गहराई से आपकी पकड़ होनी चाहिए घटनाओं पर कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको घटनाओं की गहराई में उतर करके जो ऊपर दिखाई दे रहा है उसको छोड़ करके नीचे पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर तो हम सबको दिखता है लेकिन नीचे उसके क्या चल रहा है आपको उसको पकड़ना पड़ेगा। हमको अपनी सामाजिक समस्याओं, परंपराओं, विचार करने की पद्धति की एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन व्यक्ति किस तरीके से सोचता है उस पर भी आपकी पकड़ होनी चाहिए। देखिए मैंने कौन व्यक्ति की बात कही है, हर व्यक्ति की बात नहीं कही है, क्योंकि एक ही सिचुएशन होगी उसी में जो डिफरेंट डिफरेंट व्यक्ति होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोचेंगे। तो मित्रों जब इतनी पकड़ होती है तब जाकर के आप कहीं इस मस्तिष्क की इस स्थिति तक पहुंचते हैं। फिर एक बात आपने और देखा जो बड़ी अद्भुत बात है कि पूरी फिल्म में आप देखते हैं कि प्रॉब्लम्स आती हैं। आपने देखा ना कि प्रॉब्लम्स आती हैं थोड़ी सी फिल्म चलने के बाद, जब वो तीन लड़कियों से शादी कर लेता है और फिर समस्या शुरू होती है। आप देखिए कि हर कदम पर प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कपड़ा शर्ट दूसरी पहन लिया है तो प्रॉब्लम आई है, मॉल का सीन याद कर लिए कि वहां घुमा सामान खरीदने गया है तो पता लगा कि दो तीन उसकी सारी की सारी पत्नियां न केवल मिल जाती हैं बल्कि अगली जो शादी चौथी होने वाली है उसके पिता भी मिल जाते हैं। मुश्किल तब हो जाती है जब ये तीनों पत्नियां जिनसे शादी कर चुका है आपस में सहेलियां बन जाती हैं, उनके आपस में परिचय हो जाते हैं। आप कल्पना करके देखिए कि समस्या को कितना गंभीर और जटिल बनाता चला गया है कहानीकार। और ये जो पात्र है, ये पात्र उन जटिल समस्याओं में से किस तरह से समाधान के सूत्र निकालता चला जाता है। माल का सीन याद कीजिए, बाप रे, यहां वहां ये फोन वो फोन और फटाफट उसका दिमाग काम कर रहा है। दिमाग ऐसे काम कर रहा है जैसे कि कोई जादू हो, उसे फटाफट जैसे बटन दब रहे हैं और सॉल्यूशंस निकलते आ रहे हैं। तत्काल निराकरण, कोई सोचने का वक्त नहीं, और निराकरण भी इस तरीके से कि वो सारे निराकरण एक दूसरे से टकराएं नहीं। मित्रों ये बहुत बड़ी बात है। आपको लगता होगा कि ये बहुत असंभव सा है, कहानियों में होता भी है कि चीजें थोड़ी सी असंभव सी हो जाती हैं क्योंकि तभी आप कहानी के सूत्रों को जोड़ पाते हैं। लेकिन मित्रों जो ब्रेन है, सच पूछिए तो आप इस फिल्म को देखने के बाद जो आपको मैसेज लेना चाहिए वो ये है कि ब्रेन में एक अद्भुत क्षमता होती है, वो समस्याओं से घबराता नहीं है कितनी भी समस्याएं आ जाएं। अगर आप अपने दिमाग को समस्याओं को सुलझाने में लगा देंगे तो वहां से वो उसका समाधान निकाल ही लाएगा।
ये ब्रेन की विशेषता होती है। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही कोई समस्या आती है तो सबसे पहले तो हमारा ब्रेन सरेंडर करता है, बाप रे बाप हम नहीं कर सकते, ये तो मेरे बस की बात नहीं है। फिर हम किसी दूसरे से पूछेंगे या छोड़ ही देंगे या निराश हो जाएंगे, झुंझलाने लगेंगे, गुस्सा हो जाएंगे। याद रखिए कि जैसे ही आप निराश होंगे, गुस्सा होंगे, झुंझलाने लगेंगे, इसका मतलब है कि आपने अपना आंतरिक संतुलन खो दिया है। और मुश्किल की बात यह है कि आपने अपना आंतरिक संतुलन उस समय खोया है जिस समय सबसे ज्यादा आंतरिक संतुलन की जरूरत है, क्योंकि इसी समय तो सबसे ज्यादा उसकी आवश्यकता है, और उसी समय आप उसको ढीला छोड़ देते हैं, उसको अनबैलेंस कर देते हैं हम सब। और नतीजा यह होता है कि जो समस्या छोटी सी थी, सरल सी थी, वो और बड़ी बन जाती है और जटिल बन जाती है, और पता लगता है कि फिर वो हमारे, सच पूछे तो, हाथ से बाहर ही निकल गई है, और हम फिर उस समस्या के विक्टिम बन जाते हैं, हम उसकी समस्या के शिकार बन जाते हैं। तो मित्रों, जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि जो हमारा दिमाग है ये अद्भुत क्षमताओं से युक्त है, जो उस फिल्म में आप देखिए। और मैं चाहूंगा कि अगर आपको इसी की जांच करनी हो तो उसको अब आप इस नजरिए से देखिए, फिर से जाके देखिए, तब आपको पता लगेगा कि नहीं, आई कैन डू इट, एनीथिंग कैन बी डन, कुछ भी किया जा सकता है। तो मित्रों, बहुत दिनों के बाद मैंने एक फिल्म के बारे में आपसे बात की है, और हाँ, अब ये जरूर है कि आगे भी हम बीच बीच में फिल्मों के बारे में बातें करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट स्टेज पर, जो ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज का स्टेज है। आप लोगों ने न्यूज सुनी ही होगी। जो सबसे महत्वपूर्ण खबर, या कह लीजिए एकमात्र जो बड़ी खबर कल की आकाशवाणी के समाचार में थी फ्रेंड्स, वो काला धन को लेकर के थी, ब्लैक मनी को लेकर के थी। और मैं आप लोगों से अर्ज करना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक है, खासकर ब्लैक मनी, जिस तरह से इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति जिसको हम महंगाई कहते हैं बोलचाल की भाषा में, और काला धन, ये दो टॉपिक इंडियन इकोनॉमी के इतने प्रोमिनेंट टॉपिक हैं, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि आप देखेंगे कि घुमा फिरा करके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में इनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई प्रश्न एग्जामिनेशन में हर साल आता ही आता है। तो फिर मुझे यह लगता है कि ये जो ब्लैक मनी की कल जो खबर थी, अगर आप उस ब्लैक मनी के न्यूज को बहुत ध्यान से सुने तो आपको उसमें ये बड़े आराम से दिखाई देगा कि सरकार इसके बारे में कौन कौन से स्टेप उठाने जा रही है, आपको बिल्कुल क्लियर कट पता लग जाएगा। मैं समझता हूं कि अगर किसी को 200 शब्दों में उत्तर लिखना हो और 5-6 बड़े सॉलिड पॉइंट उसे मिल जाएं, तब फिर उसके एलिबरेट के इलेबरेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से उसको थोड़ा सा विस्तार देकर के वो 200 शब्दों का एक अच्छा खासा अपना उत्तर तैयार कर सकता है। जैसे मैं न्यूज की ही बात आपको बताता हूं, नो डाउट काला धन को लेकर के था। आपको मालूम है कि विदेशों में जो हमारा हमारे लोगों का निकाला धन जमा किया हुआ है, उसके बारे में सरकार ने कुछ मोहलत दी थी कि आप उसको डिक्लेयर कर दीजिए। कुछ डिक्लेयर भी हुआ है, लेकिन वो बहुत कम डिक्लेयर हुआ है, लगभग 37,000 करोड़ रुपए या कुछ है, जो बहुत कम है, जो उम्मीद की जा रही थी उसकी तुलना में 3700 करोड़ रुपए कुछ है। डाटा देख लीजिएगा, जरा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन जो हम चाह रहे थे, जो मान करके चल रहे थे, उसकी तुलना में वो बहुत कम राशि है। तो मित्रों, अब जो हमारे वित्त मंत्री ने जो कहा, जिसको लेकर के न्यूज का आधार बनाया गया था, उन्होंने ट्वीट किया था, उन्होंने एक स्टेटमेंट तो ये दिया है कि हमारे अपने ही देश में बहुत काला धन है, हम विदेश के ऊपर ही न जाएं कि साहब विदेश में ही बहुत काला धन है, हमारे अपने यहां कम काला धन नहीं है, राइट। इसका मतलब है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारी आर्थिक समस्या है, बहुत बड़ी आर्थिक समस्या है। इसके बाद उन्होंने जो बातें बताई हैं कि सरकार क्या क्या स्टेप उठाने जा रही इस काले धन को नियंत्रण करने के लिए, तो इससे पहले कि आप उन स्टेप्स को पढ़ें, समझें या एलोबरेट करें, आपको चाहिए कि पहली बात तो आप समझें कि काला धन होता क्या है, उसके बेसिकली डेफिनेशन क्या है। अवैध तरीके से इकट्ठा किया गया धन, मतलब जिस पर टैक्स नहीं चुकाया गया, ये सब काले धन के अंतर्गत आते हैं। फिर आप देखिए कि सरकार इस काले धन को नियंत्रित करना क्यों चाहती है, यानी कि काला धन का जो प्रभाव होता है अर्थव्यवस्था पर वो किस तरीके का होता है, ये आपको पढ़ना चाहिए, ये आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। याद करने की बात नहीं कह रहा हूं मैं, इसको बहुत अच्छे से आपको समझ लेना चाहिए। फिर काला धन के प्रभाव को समझने के बाद फिर अब देखिए कि सरकार अब क्या स्टेप उठाने जा रही है। देखिए काला धन की समस्या के समाधान के स्टेप्स शुरू से उठते चले जा रहे हैं, क्योंकि आज की समस्या नहीं है। हाँ, आज ये इतनी बड़ी समस्या, मतलब आज बहुत बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि लगातार काला धन बढ़ता चला जा रहा है, वो एक पैरेलल इकोनॉमी का काम करने लगी है। तो आप देखेंगे कि न्यूज में जो स्टेप्स गवर्नमेंट के बताए गए हैं वो आपके जहन में होने चाहिए, क्योंकि जो जनरल स्टडीज है फ्रेंड्स, जो सिविल सर्विस में आप लिख करके आते हैं, उसका करंट से बहुत संबंध होता है। वैसे आप इकोनॉमिक्स की किताब उठा करके देख लीजिए तो काला धन के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, वो आपको ढेर सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। किया जाना चाहिए एक अलग बात है, लेकिन आज के संदर्भ में आज की जो जरूरतें हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, वैल्यू सिस्टम बदल गए हैं, गवर्नमेंट के पास निगरानी तंत्र के अलग अलग उपाय हो गए हैं, ऐसे समय में गवर्नमेंट क्या कर सकती है और क्या कर रही है, आपका ध्यान उस पर फोकस होना चाहिए और वहां आप किताब को छोड़ दीजिए। प्रभाव क्या पड़ते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए, और अभी क्या प्रभाव पड़ रहे हैं आपको ये भी मालूम होना चाहिए। इसके बाद फिर सरकार क्या स्टेप लेने जा रही है उस पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो उत्तर का जो पूरा का पूरा के उत्तर की जो संरचना बनेगी वो अभी के हिसाब से बनेगी। तो आपने न्यूज में सुना होगा कि एक तो उन्होंने बताया कि पैन कार्ड, पर्सनल अकाउंट नंबर जिसको हम कहते हैं, अब वो अनिवार्य किया जा रहा है, और 1 लाख रुपए से अधिक का जो भी लेन देन होगा उसमें पैन कार्ड डालना अनिवार्य होगा। मतलब अब आप उस तरीके से पैसा नहीं खर्च कर सकेंगे कि वो किसी के खाते में दर्ज है ही नहीं, या उसकी जिसकी लिखा पढ़ी ना हो, अगर लिखा पढ़ी है तो गवर्नमेंट उसको कभी भी चेक कर लेगी, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी की ये पावर आ गई है। उसमें ये भी हुआ कि निगरानी तंत्र को मजबूत बनाया जाएगा, मतलब अब निगाह रखेगी सरकार सभी के खर्चों पर। जैसे आपको बताऊं मैं, अब जो शादी ब्याह होने लगे हैं, शादी ब्याह के खर्चों पर सरकार की निगाह होती है, टेंट वाले हैं जो ये सब खर्च करते हैं ना, जो इस तरह की व्यवस्था करते हैं, उनके खाते सरकार देखती है कि भैया ये किसके किसके यहाँ टेंट लगाया और कितने करोड़ का कितने लाख का टेंट लगा, वहां से सरकार उनकी सब जानकारी लेती रहती है। जो सरकार रजिस्ट्रियां जो होती हैं प्रॉपर्टी की, वहां पर इनकम टैक्स वालों की निगाह होती है कि कौन कौन जमीन खरीद रहा है, बेच रहा है, कितने में खरीद रहा है, बेच रहा है। तो इस तरीके से वो निगरानी तंत्र अपना बनाए हुए हैं ताकि वो लोगों पर निगाह रख सके, तो उससे उनकी आमदनी का पता लगता रहेगा। इसी तरह से टेक्नोलॉजी की बात की, टेक्नोलॉजी को बहुत दुरुस्त किया जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो यह है कि जैसे आपने पैन नंबर डाल दिया तो पता लगा कि जिस उस एक सिमिलर पैन नंबर, मान लीजिए कि एक साल में 20 जगह डला हुआ है, तो 20 जगह का डेटा एक जगह इकट्ठा होकर के आ जाएगा और पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर आदमी ने एक साल में इतना सामान खरीदा है, इतनी चीजें बेची है, तो वो टेक्नोलॉजी उसमें मदद करेगा। निश्चित रूप से मित्रों, जो प्लास्टिक करेंसी आई है, अब एक बिल्कुल एक डिफरेंट एस्पेक्ट आ गया है कि आपको क्रेडिट कार्ड के जरिए आप लेन देन कर लीजिए, आपको कैश देने की जरूरत ही नहीं है, और जब भी आप क्रेडिट कार्ड से लेते हैं कोई भुगतान करते हैं तो अनरिकॉर्ड होता है। देखिए जो ब्लैक मनी है वो अनरिकॉर्डेड मनी ही है, आप एक तरीके से कह दीजिए। यदि किसी तरह से हम उसको रिकॉर्डेड मनी में कन्वर्ट कर दें तब फिर आपको अपने हिसाब में जो साल भर में आप अपना असेसमेंट कर अपना भरते हैं, जो इनकम टैक्स का जो फॉर्म भरते हैं उसमें वो आएगा ही। आप ये गलती नहीं कर सकते कि आपने रिकॉर्डेड मनी को उसमें नहीं डाला हो, वो हिम्मत नहीं कर सकते। फिर एक बहुत बड़ी बात जो सरकार ने कही है, वित्त मंत्री ने कही है, और मैं समझता हूं कि जिसकी मांग बहुत लंबे समय से हो रही है, वो है कर की दर। लोगों का ये कहना है कि जो इनकम टैक्स कि जो दर है वो बहुत हाई है, बहुत ऊंची है, और नतीजा ये होता है कि चूंकि वो दर बहुत हाई है, मेरे समझ से शायद 10 लाख रुपए से ऊपर की कमाई पर बचत पर 30% इनकम टैक्स की दर है, मतलब 10 लाख रुपए अगर आप कमाते हैं, मतलब बचत दिखाते हैं, तो उसमें 3 लाख रुपए आप गवर्नमेंट को दे देते हैं। तो लोगों को ये बड़ा पिंचिंग लगता है, बड़ा दुखद लगता है कि यार हमने मेहनत करके कमाया और इतनी बड़ी राशि हम सरकार को इनकम टैक्स के रूप में दे रहे हैं, तो फिर वो दूसरे तरीके निकालते हैं उनको बचाने के, ज्यादा खर्चा दिखाएंगे, जो कमाई होगी उसको नहीं दिखाएंगे कि कमाई हुई। और सच पूछे तो लोगों का यही मानना अर्थशास्त्रियों का कि अगर ये जो इनकम टैक्स की जो दर है यह कम कर दी जाए तो लोग देने के लिए प्रेरित होंगे, क्योंकि काला धन बनता ही वहां है जहां आप टैक्स नहीं देते हैं, और टैक्स की दर ऊंची है इसीलिए आप टैक्स नहीं देते हैं। नतीजा यह होता है कि ये ब्लैक मनी में कन्वर्ट होता चला जाता है। तो सर वित्त मंत्री जी ने यह भी कहा है कि टैक्स की दर भी सरकार उसको न्याय संगत बनाने की सोच रही है कि उसको कम किया जाए। तो मित्रों ये केवल न्यूज की मैं आपको बात बता रहा था कि न्यूज को ध्यान से सुनने पर कौन कौन से पॉइंट्स आपको अपने लिए मिल जाएंगे। और आज के जो अखबार हैं उसमें स्वाभाविक तौर पर ब्लैक मनी को लेकर के काफी न्यूज आइटम्स भी हैं और एडिटोरियल कमेंट्स भी हैं, तो वो मैं आपको नॉलेज सेंटर में प्रोवाइड कर रहा हूं। एक दैनिक भास्कर का एक बहुत अच्छा आर्टिकल जैसा ही है, इसे आप लोग जरूर पढ़िएगा। यहां आपको दो चीजें पता लगेंगी, पहला तो यह कि काला धन कहां कहां है, किन किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा जनरेट होता है। दूसरा, इन्होंने दो उपाय बताए हैं काला धन पर को नियंत्रित करने के लिए। एक तो है मजबूत खुफिया और प्रशासनिक तंत्र, और दूसरा है न्यायिक तंत्र, मतलब इससे संबंधित जो लिटिगेशन होती हैं वो जल्दी से जल्दी उन्हें ठीक किया जाना चाहिए। और मित्रों इसी को ही लेकर के दो और एडिटोरियल कमेंट हैं, एक इकोनॉमिक टाइम्स का है और दूसरा आपके टाइम्स ऑफ इंडिया का भी है। ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप लोग इसे देख लेंगे। फ्रेंड्स, जो मैं आपको डेटा बता रहा था कि वो कितने करोड़ रुपए आए हैं, तो लोगों ने केवल 3770 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति बताई है। 3770 करोड़ रुपए जो बहुत कम है, नहीं के बराबर है जितना उम्मीद किया जा रहा था उसको लेकर। फ्रेंड्स, अब जो दूसरी खबर है वो छोटी सी खबर है, लेकिन जो स्टूडेंट कंटिन्यूटी में तैयारी करते हैं ये छोटी सी खबर भी उनको फिर एक मजबूती देती है, उनकी सोच को मजबूती देती है, उनके दिमाग में कंटेंट प्रोवाइड करती है। और सच पूछे तो कि वो एक तरीके से दूसरों की तुलना में उत्तर लिखने में माइलेज ले लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारियां रहती हैं। जैसे जर्मनी की चांसलर मर्केल जो है वो भारत आई हुई है, न्यूज में आपने देखा। तो खासकर मैं आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं, बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, जर्मनी और भारत के रिश्तों को लेकर के दैनिक जागरण का। उसमें उन्होंने बताया है कि जर्मनी हमारे लिए किन किन सेक्टर में सबसे अधिक सहयोगी और उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसमें आपको ढेर सारी चीजें मिलेंगी, मैंने अंडरलाइन कर दिया, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए, एक तो जर्मनी ने जो यूरोप की जो राइन नदी है उसकी सफाई करके एक बहुत बड़ा एक मापदंड स्थापित किया है, तो नदियों के सफाई में उसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। दूसरा, जर्मनी की बहुत बड़ी ख्याति है स्किल डेवलपमेंट में, बहुत बड़ी ख्याति है, विश्व में विख्यात है। और आपको मालूम है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद, उन्होंने कहा है कि 2022 तक 40 करोड़ लोगों को हमें प्रशिक्षित करना है, स्किल्ड बनाना है, और इसके लिए अलग से मंत्रालय भी बना दिया गया है। तो डेफिनेटली यहां भी जो जर्मनी है हमारे लिए काफी मददगार हो सकता है। तो कुछ ही पॉइंट्स आपको लेने हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाइएगा, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आप देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, एक खबर थी सागर माला की बैठक को लेकर के, मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है। सागर माला, बहुत सिंपल सी बात है कि हमारी जो सागर है उनको उनकी एक माला बनानी है। तो माला कैसे बनाएंगे, यानी कि समुद्र के किनारे जो हमारे बंदरगाह हैं उन बंदरगाहों को जोड़ने का एक उपक्रम है सागर माला, कि उनको जोड़ा जाए ताकि वो अधिक से अधिक उपयोगी हो सके हमारे इंटरनल मार्केट ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी और एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी। तो उसकी बैठक होने जा रही है, देखते हैं कि उस बैठक में क्या होता है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि सागर माला क्या है। और न्यूज में आपने ये भी सुना है कि हमारी जो समुद्री जो सीमाएं हैं जिन पर हमारे बंदरगाह बने हुए हैं वो लगभग 7500 किलोमीटर है, 7500 किलोमीटर है। तो एक डेटा जो है हमारे दिमाग में दर्ज हो जाता है। फ्रेंड्स, ये न्यूज में केवल इतनी ही बातें थी। आज अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर पर। न्यूज़पेपर की कुछ बहुत प्यारी क्लिपिंग्स आज हैं फ्रेंड्स, और ये सभी क्लिपिंग्स आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगी। मैं प्लीज इन्हें थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ें, और कुछ क्लिपिंग्स तो ऐसी हैं जिन्हें आप रिकॉर्ड के रूप में रख सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय सहारा का नेपाल के संविधान को लेकर के है कि नेपाल के संविधान पर भारत को जो आपत्ति है वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिन पर भारत चाहता है कि नेपाल उन पर पुनर्विचार करे। तो ये एक क्लिपिंग्स है फ्रेंड्स, ये मैं डाल रहा हूं। दो क्लिपिंग्स बहुत अच्छी हैं इकोनॉमिक टाइम्स की, एक खासकर अक्षय ऊर्जा को लेकर के है, और उसमें उन्होंने जो पन बिजली परियोजना है उसको लेकर के बात की। ये न्यूज आइटम है, अंडरलाइन मैंने कर दिया है, इसको आप देखिएगा, क्योंकि जो रिन्यूएबल एनर्जी है या जिसको अब आप कह सकते हैं कि ग्रीन एनर्जी, वो एक बहुत बड़ा इश्यू है, न केवल भारत के लिए ही बल्कि दुनिया के लिए, और मुझे लगता है कि भारत इसमें बहुत जल्दी माइलेज ले लेगा। क्योंकि आपको ये भी मालूम है फ्रेंड्स कि भारत ने अब जो अपना जो गैसों का उत्सर्जन जो कम करने की जो घोषणा की है, जिसको उन्होंने कहा है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस INDC, भारत ने ये टारगेट रखा है कि वो अपने GDP का 33-35% अगर 2005 को मापदंड बना करके 2030 तक कम कर देगा। ये भारत ने अपनी तरफ से घोषणा कर दी है, और घोषणा करने के पीछे कारण यही था कि अभी पेरिस में सम्मेलन होना है दिसंबर में, तो भारत ने एक अच्छा एक स्टेप उठाया है टुवर्ड्स पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से। इसमें नो डाउट कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च होना है, और इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसके लिए उसे जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहां से टेक्नोलॉजी भी मिलेगी और वहां से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा। तो इससे रिलेटेड भी जो एडिटोरियल कमेंट है टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। फ्रेंड्स, इसी तरह से बिजनेस स्टैंडर्ड का एक और अच्छा न्यूज आइटम के फॉर्मेट में छपा है, खासकर कृषि उत्पादन में रवि का हिस्सा बढ़ाने की योजना। ये बहुत ही खूबसूरत न्यूज आइटम है, इसको भी मैंने अंडरलाइन कर दिया है। इसमें उन्होंने बताया है कि जो रबी और खरीफ हमारे जो पूरा का पूरा खाद्यान्न उत्पादन है, उसमें दोनों का योगदान 50% है। सरकार सोच रही है कि उसमें से रबी के उत्पादन को खरीफ के उत्पादन को वो बढ़ाए, लेकिन मुश्किल है कि खरीफ का उत्पादन मतलब मानसून पर ही बढ़ सकता है। हमारे यहाँ सिंचित क्षेत्र केवल 46.34% है, तो कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है, तो उसके बारे में उन्होंने कुछ खासकर GM तकनीक की बात कही है, और जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है उसका भारतीय कृषि व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, सेकेंड हाफ में इसमें यह भी दिया हुआ है। और आपको मालूम होगा कि पिछले साल एक क्वेश्चन आया था जनरल स्टडीज मेंस में, जिसमें उन्होंने खासकर अल नीनो के प्रभाव के बारे में, की सच्चाई के बारे में हमसे पूछा था, लेकिन इसमें पूरे के पूरे एक तरह से क्लाइमेट चेंज के बारे में ही कहा गया है, तो आपको एक अच्छा इंसाइट देगा। फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छा पीस में एक अलग तरीके का आपको प्रोवाइड कर रहा हूं जनसत्ता का, जब एक ऑक्टावियो पाज हुए थे, मैक्सिको के कवि थे जो भारत में राजदूत भी रहे, इन्होंने खासकर भाषा संस्कृति राजनीति इनको लेकर के बहुत अच्छी बात इसमें कही है, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा, ये ऐसे राइटिंग में जबरदस्त रूप से आपकी मदद करेगा। इस लिस्ट से मैं ये आइटम प्रोवाइड कर रहा हूं, इसको मैंने जानबूझकर अंडरलाइन नहीं किया है ताकि आप बिल्कुल स्वतंत्र रूप से पूरे हिस्से को पढ़ सकें और कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट भी कर लें। दोस्तों, न्यूज पेपर्स के बारे में इतना ही। अब मैं आता हूं अंतिम अपने चरण पर, जो ईमेल का चरण है। आज मेरे पास चार नाम हैं, ये उन स्टूडेंट्स के नाम हैं जो अक्टूबर की अभी क्लासेस में आ रहे हैं, तो इन्होंने अपने मोबाइल नंबर दिए हैं कि उनके एरिया से जो भी स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट अक्टूबर की क्लास में आ रहे हों, वो चाहें तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मित्रों, पहला नाम है सुरेंद्र प्रताप का, जो इलाहाबाद से आ रहे हैं। इनका मोबाइल नंबर है 8934067391। दूसरे स्टूडेंट हैं विष्णु राठौर, जो हरदा मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। इनका मोबाइल नंबर है 9754540767। तीसरे स्टूडेंट हैं राघवेंद्र मिश्र, जो इलाहाबाद और गोरखपुर से आने वाले स्टूडेंट के लिए अपना मोबाइल नंबर देना चाहते हैं। इनका मोबाइल नंबर है 9455554781। और चौथे स्टूडेंट हैं विशाल केशरी, जो इलाहाबाद से ही आ रहे हैं, और इन्होंने अपना मोबाइल नंबर बताया है 8423960010। फ्रेंड्स, जो विशाल केशरी का जो मैंने अभी नंबर कहा है, इसमें एक डिजिट मिसिंग लग रहा है, आप लोग अभी इसे नोट न करें, मैं आपको कल इसे करेक्ट कर दूंगा कि इनका मोबाइल नंबर क्या है विशाल केशरी का, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। अब मित्रों, मैं आता हूं दूसरे स्टूडेंट्स पर, बहुत से मेल आए हैं, उन सबको बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरे पास राजेश कुमार का मेल है, जो पटना से उन्होंने लिखा है और हमारे सेकेंड बैच के स्टूडेंट रहे हैं, उन सेकेंड बैच के ही एक और स्टूडेंट थे, उनका स्वास्थ्य काफी खराब चल रहा है तो उसके लिए उन्होंने प्रार्थना करने की बात कही है। राजेश आपने नाम नहीं लिखा कि वो आपके दोस्त का नाम क्या है, लेकिन फिर भी मैं अपनी ओर से और अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी ठीक हो, बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन उनके स्वास्थ्य में आए और आप सब भी अपने अपने स्तर पर उनके लिए प्रार्थना करें ताकि वो जल्दी से स्वस्थ होकर के फिर से अपने काम में जुट जाएं। हम सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। मेरे पास बड़ोदरा से अनिल सिंह तोमर का मेल है, उन्होंने क्लासेस के लिए पूछा है। तो अनिल, ये जो हमारी क्लासेस हैं, सच पूछे तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ऑनवर्ड्स कोई भी इसे ज्वाइन कर सकता है और इससे उसको न केवल अपने कॉलेज के ही पढ़ाई में फायदा होगा बल्कि मतलब न केवल सच पूछे तो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में के लिए ही फायदा होगा बल्कि कॉलेज के लिए भी उसको काफी फायदा पहुंचेगा क्योंकि ये ओवरऑल सब्जेक्ट्स और पर्सनालिटी और लाइफ को लेकर के ये क्लासेस चलती हैं। तो मित्रों, अब मैं उन सभी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मेल लिखे हैं। इनमें से कुछ के नाम हैं: अखंड प्रताप सिंह आगरा से, पप्पू मंडोल, विनय अग्रवाल कोरिया छत्तीसगढ़ से, निशा पुरोहित सिरोही राजस्थान से, हरिओम तिवारी इलाहाबाद से, हरिमोहन जींद हरियाणा से, सेजिल कुमार राजकोट गुजरात से, उत्कर्ष दीप पटना से, पायल शर्मा गोरखपुर से, रजनी शुक्ला इलाहाबाद से, कृष्ण कुमार यादव अलवर से, पवन घाटशिला से, विनोद जाचरिया जालौर राजस्थान से, वरुण कुमार पांडे इलाहाबाद से, अमित शुक्ला अयोध्या से और शालिनी वर्मा नई दिल्ली से। आप सबका आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, इसी के साथ ही मैं आज के अपने इस ऑडियो गाइडेंस को यहीं विराम देने की इजाजत चाहता हूं। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।